नित ही नित कर गुणि विचार, नित ही नित कर गुणि विचार, जीवन सार, क्या मरे क्या जीवन सार,
क्या मरे क्या जीवन सार, क्या मरे क्या जीवन सार,
क्या उत्पत क्या परलय होई, क्या उत्पत क्या परलय होई,
क्या उत्पत क्या परलय होई, क्या उत्पत क्या परलय,
कहाँ से आवे कहाँ जाए बसोई, कहाँ से आवे कहाँ जाए बसोई,
कहाँ से आवे कहाँ जाए बसोई, कहाँ से आवे कहाँ जाए,
कौन मितर जो मित संग बासी, कौन मितर जो मित संग बासी,
कौन मितर जो मित संग बासी, कौन मितर जो मित संग बासी,
कौन ज्ञान जो कटे चौरासी, कौन ज्ञान जो कटे चौरासी,
कौन ज्ञान जो कटे चौरासी, कौन ज्ञान जो कटे चौरासी,
हे विचार करो अत सुखदाई, हे विचार करो अत सुखदाई,
हे विचार करो अत सुखदाई, हे
कह विध मनुआ शांत समाई, कह विध मनुआ शांत समाई,
कह विध मनुआ शांत समाई, कह विध मनुआ शांत समाई,
उठ उठ धाये मन अंधकारी, उठ उठ धाये मन अंधकारी,
उठ उठ धाये मन अंधकारी, उठ उठ धाये मन
पावे बिन सत विचारी, और न पावे बिन सत विचारी,
और न पावे बिन सत विचारी,
नित ही नित कर भूमि विचार, क्या मरे क्या जीवन से। गुणी पुरुष, तू ये निरंतर विचार कर, क्या नष्ट हो जाता है और क्या जीवन का सार। तो हम सब जानते हैं कि शरीर नष्ट हो जाता और जीवन बच जाता है। शरीर नष्ट हो जाता है और जीवन बच जाता है। वास्तव में जो बच जाता है वही जीवन का सार भी है। सार वस्तु बच जाती है और नाशवान चीज जो है वो नष्ट हो जाती है। ये मैंने निरंतर विचार करना है। ये एक दिन बैठकर या दो घंटे बैठकर मैंने विचार कर लिया, ऐसी बात नहीं। जिस प्रकार संसार के सुख के लिए, उसके लिए संपत्ति अर्जित करने के लिए मैं निरंतर सोचता रहता हूँ, निरंतर प्रयत्नशील रहता हूँ, कभी चैन से बैठता नहीं, उसी प्रकार जीवन के सार के बारे में तूने निरंतर विचार करना है। ये जीवन का तेरा अंग बन जाता है, जीवन का उद्देश्य बन जाता है, तेरी मंजिल बन जाती है। तो क्या उत्पत्त क्या परलय होई, कहां से आवे कहां जाए बसो। क्योंकि एक बात तो मुझको अच्छी तरह पता है कि मेरी प्रिय देह ये नष्ट हो जाती है, ये मर जाती है। लेकिन वो एक और बात भी करे, ये देह मरती अवश्य है, लेकिन क्या उत्पत्त क्या परलय है। इस देह की तो प्रलय हो जाती है, अर्थात ये पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, लेकिन फिर कुछ पैदा भी होता है, कुछ उत्पत्ति भी होती है। तो क्या नष्ट हो जाता है और क्या पैदा होता है, विचार मैंने ये करना है। कहां से आवे कहां जाए बसो, तो कहां से आता है और कहां जब इस देह की मौत होती है कहां तो पुनः बस जाता है। इसका मतलब ये देह नाशवान है जरूर, परंतु मैं पूरी तरह से इस देह के साथ नष्ट नहीं होता। वाणी आपको ये याद दिला दे। अब विचार करो, जो नष्ट हो गया वो मैं हूं या जो बच गया वो मैं हूं। मैं वो बीज हूं जो पुनः जब धरती में बोया जाता है पुनः वृक्ष बन जाता है। तो बीज से वृक्ष बन जाता है ये मैं जानता हूं, क्योंकि मैं स्वयं वो बीज हूं जो पुनः शरीर के रूप में उत्पन्न हो जाता है। इसका मुझे ठीक ठीक पता नहीं, इसका विज्ञान मुझे पता नहीं। क्यों नहीं पता, क्योंकि मैं अपने आप को कुछ का कुछ समझ रहा हूं। बहुत बड़े अज्ञान के साथ मैं ये मानव जीवन व्यतीत कर रहा हूं, और सत्पुरुष बार बार धरती पर आते हैं, अवतार बार बार धरती पर आते हैं, बार बार शास्त्रों की रचना होती है, उनका जीवन हमारे सामने पेश होता है, हम उनको पसंद भी करते हैं, उनके पास जाने की कोशिश भी करते हैं। शांति हमको पता है, यदि कहीं मिलेगी तो गुरु के चरणों में मिलेगी, प्रभु के चरणों में मिलेगी, ये पता है हमें। लेकिन फिर भी संसार में जो अशांति का सागर है उसमें भटकता रहता हूं और जीवन मेरा खत्म हो जाता है। इतना लंबा जीवन व्यतीत करने के बाद भी मेरे अंदर सत बुद्धि नहीं आती, सांसारिक बुद्धि बनी रहती, जो मुझे बार बार धोखा देती है, मेरे बारे में जो सही निर्णय है उसको वो गलत बताती है और जो गलत निर्णय है उसको सही बताती है। इसीलिए ये बात साधारण नहीं है। क्या उत्पत्त क्या परलय होई, कहां से आवे कहां जाए। कि मैं कहां से आया। इसका मतलब मेरा आना भी और कहां जाए बस वही, और फिर बस जाता हूं कहीं पर, तो मेरा आना भी और फिर दोबारा बसना वहां पर जहां से आया हूं वहीं बस जाता हूं, ये दोनों क्रियाएं होती कहां। देह जब मर जाती है, देह जब शांत हो जाती है, इसको जब जलाकर नष्ट कर दिया जाता है, लेकिन मैं फिर भी बच जाता हूं। मैं एक बात अच्छी तरह से जानता हूं, इस देह का जो उपयोग है मेरे वास्ते वो कारण मुझको एक ही नजर आता है कि मन के अंदर जो कल्पना उठती है जिसको हम इच्छा करके देखते हैं, मेरी कोई भी जब इच्छा होती है तो मुझे पता है ये इच्छा यदि पूरी हो जाए तो मुझको सुख मिले, और उस इच्छा की पूर्ति के लिए मैं देह का उपयोग करता हूं, देह का यूज करता हूं, और उस इच्छा को पूर्ण करके मैं सुख महसूस करता हूं। लेकिन अपने बारे में इतना सरल सा सत्य पता होने के बाद भी मैं कभी यह नहीं सोचता इस देह का जो उपयोग है मैं अपनी मन की इच्छा को पूरी करने के लिए ही तो कर रहा हूं। आपके मन में इच्छा कोई और है और देह कार्य कुछ और कर ले तो आप असंतुष्ट हो जाते हो, आप दुखी हो जाते हो, आप बेचैन हो जाते हो। सत्य मेरे बारे में यह है, बड़ा ही सरल सा सत्य है कि मुझको जीवन की सफलता, मुझको सुख की प्राप्ति केवल मन की इच्छा पूरी करने से होती है। तो सतपुरुष यही बात आपको समझाना चाह रहे हैं, तू जीता तो है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, लेकिन समझता है अपने आप को शरीर जो कि नाशवान है। तेरी आंखों के सामने है कितने तेरे अपने चले गए, उनकी देह शांत हो गई, खत्म हो गई। तो कहते हैं कि क्या उत्पत्त क्या परलय होई, कहां से आवे कहां जाए बस होई। मैंने इसके बारे में गहराई से विचार करना था। वो कह रहे हैं कि जब मेरा शरीर उत्पन्न होता है अर्थात पैदा होता है तो ये आता कहां से, कहते कहां से आवे कहां जाए उसे। तो ये मन ही मेरा, जो पूर्व जन्म में जो मेरा शरीर था, मन नहीं मरा था, देह मर गई थी। मन वो बीज है जिससे पुनः ये देह उत्पन्न हो जाती। इसी महर्षि में कह रहे हैं कि मन ही तेरी नई देह को तैयार करता है, मन से ही तेरी नई देह तैयार होती है। एक डॉक्टर बैठा था उनके पास, वो कह रहा था महर्षि ब्रेन से मन तैयार होता है, मस्तिष्क से मन तैयार होता है, कि महर्षि रमा कह रहे हैं नहीं, मन से मस्तिष्क तैयार होता है, मन ब्रेन को तैयार करता है। यदि ऐसा नहीं होता तो एक ही घर में एक ही माता पिता का एक बच्चा बड़ा बुद्धिमान होता है, बड़ा समझदार होता है, दूसरा बच्चा बड़ा शैतान होता है, बड़ा अज्ञानी होता है। माता पिता एक ही है लेकिन दो बालकों में जमीन आसमान का अंतर होता है। क्यों है? क्योंकि उनके मन अलग अलग है, उनके मन ने इस देह के अंदर जो ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, उनके मन ने उसको तैयार किया। इसलिए जैसे ही वो बड़े होते हैं, जहां उनकी आयु 3 साल से 5 साल के बीच में होती है, माता पिता को पता लग जाता है ये आगे चल के क्या कैसा निकलेगा। तो क्या उत्पत्त क्या परलय है, क्या नष्ट हो गया और क्या बच गया, जो बच गया उसने ही पैदा होना है उसकी ही उत्पत्ति होनी है शरीर को। तो मन मेरा बच गया और क्या हुआ कि इस देह के अंदर एक और चीज भी तो है। वो कहते हैं कौन मित्र जो नित संग वासी, कौन ज्ञान जो कटे चौरासी। कौन मित्र जो नित संग वासी, तेरा वो कौन मित्र है जो तेरा संग कभी भी नहीं छोड़ता। इस देह की मौत होती है तब भी वो ऐसा मित्र है तेरी देह का त्याग नहीं करता, अर्थात तेरा त्याग नहीं करता, पक्का मित्र है तेरा। मौत भी तेरे मित्र को तुझसे जुदा नहीं कर पाएगी। तो कौन मित्र जो नित संग वासी, कौन ज्ञान जो कटे चौरासी। और वो कौन सा ज्ञान है कि बार बार तुझे संसार में आना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बचपन से लेकर हम जब एक बच्चे को अपने पालते हैं और जब तक 25-30 वर्ष की आयु उसकी नहीं हो जाती, शादी हो जाए, रोजगार खड़ा हो जाए उसका, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, तब तक माता पिता को चैन है। फिर सोचते हैं कि अभी अपने पैरों पर खड़ा हो गया, अपना पालन खुद कर ले। लेकिन मेरा एक ऐसा मित्र है जो मेरा संग कभी नहीं छोड़ता, मौत के वक्त भी नहीं छोड़ता। तो कहते हैं कि कौन ज्ञान जो कटे चौरासी, उस मित्र को जान लेना, यही वो ज्ञान है कि तू अपने उस मित्र की यदि इस देह के अंदर ही खोज कर ले, तब तेरा बार बार ये जन्म लेना और मरना ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि तेरा मित्र भी परमानेंट है और तू भी परमानेंट है, लेकिन तू एक ही गलती बार बार कर रहा है, अपने आप को शरीर समझ के जी रहा है। यही तेरी सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ा अज्ञान है। तो मनुष्य जन्म इस वास्ते मिला है कि मैंने इस अज्ञान को समाप्त करना है, जड़ से ही समाप्त कर देना है। और इस देह के रहते रहते इस देह के अंदर मेरा जो परमानेंट साथी है, जो मौत के वक्त भी मेरा संग नहीं छोड़ता, मैंने उससे भेंट करनी है, उसको जानना है, उसके साथ मैंने एक होना। तो उसके पास मैं कैसे पहुंचूं, उसका अनुभव मैं इस देह के अंदर कैसे करूं, ये वो ज्ञान है जिससे ये तेरी 84 का चक्र, 84 लाख योनियां हैं जिसमें जीव घूमता रहता है, सुख दुख भोगता रहता है। तो वो 84 का चक्र कैसे मिटे, वो ज्ञान जिसको हम अध्यात्म विद्या कहते हैं या धर्म मार्ग कहते हैं या यूं कहिए कि सत्पुरुषों का ज्ञान कहा। अब बताइए कि जो मेरा निरंतर मित्र है, जो मेरा एक मिनट भी संग नहीं छोड़ता, वो मैंने उसको छोड़ा। कैसी मेरी बुद्धि है, ये सांसारिक बुद्धि, कि अपने आप को मैंने देह समझ रखा है, मैं जानता हूं इस देह के रहते रहते इसको कैंसर हो जाता है, ये मर भी जाती है, सड़ भी जाती है, इतने दुख देती है इस देह उसको, मैं चाहता हूं कि प्रभु इस देह को तू उठा ले। इस देह के द्वारा मैं जीवन जीना ही नहीं चाहता, इसकी ऐसी दुर्गति हो जाती है। फिर भी मैं कभी नहीं सोचता कि सत्पुरुष क्या कह रहे हैं, अवतार क्या कह रहे हैं, ईश्वर क्या कह रहा है। तो इस देह की जब मौत होती है तो कहते हैं कि क्या उत्पत्ति क्या परलय होई, कहां से आवे कहां जाए बसोई। तो वो क्या चीज है कि इस देह की जब मौत होती है तब इसके अंदर एक चीज बच जाती है जिसको हम मन कहते हैं, जिसको हम बुद्धि कहते हैं, जिसको हम जीवन कहते हैं। इस देह के अंदर जीवन भी है वो बच जाता है, इस देह के अंदर मन भी है वो भी बच जाता है, इस देह के अंदर बुद्धि भी है जो अहंकार करके कहती है कि मैं हूं, मन मेरा है। मैं कहता हूं ना कि मन किसका है, मन मेरा है। इसलिए मन में जो इच्छा उठती है, वासना की तरंग उठती है, मैं कहता हूं ये मेरी इच्छा है। तो तेरा मन भी बस जाता है, तू भी बस जाता है, और इस देह के अंदर जो तेरा जीवन है वो भी बस जाता है। तो ये तेरी संपत्ति है, जिसमें तेरा जीवन मौजूद है, वो संपत्ति नहीं है जिसमें मौत मौजूद है, जो नष्ट हो जाती है, पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, देह में कुछ भी तो नहीं बचता। तो मैंने इस ज्ञान को सीखना था इस देह के रहते हुए, इसीलिए इस देह की जब मौत होती है तो उपनिषद कह रहा है कि उसकी प्रक्रिया क्या होती है। उसकी प्रक्रिया यही होती है, मैं जानता हूं, जिसकी भी मौत होती है सबसे पहले उसकी श्वास बंद हो जाती है। वो कहते हैं श्वास बंद नहीं होती है, श्वास जिसमें से उदय हुई थी उसी में प्रवेश कर जाती है, इसलिए श्वास का एक नाम प्राण है। और प्राण ये जहां से उदय होता है उसका नाम महाप्राण है। योग भाषा में उस महाप्राण को कुंडलनी कहते हैं। वही इस देह का जीवन है, तेरे रोम रोम में तेरा जीवन बसा हुआ है, रमा हुआ है। कहीं एक सुई जरा छुआ के भी देख लो, पता लग जाएगा वहां तकलीफ हो रही है। तो तकलीफ तो जिंदा वस्तु को होती है ना, तो एक तेरा रोम कुप भी जीवन से खाली नहीं। तो वो जो जीवन है, वो जो महाप्राण है, ये प्राण तेरा उसमें प्रवेश कर जाता है। और तेरा मन भी तो बच जाता है, मन तेरा इस प्राण में प्रवेश कर जाता है, मन प्राण में प्रवेश कर जाता है और तेरा प्राण महापाप प्राण में प्रवेश कर जाता है। इसीलिए तू तेरा जो नित्य का संग है, नित्य का संगवासी जो है इस देह के अंदर, उसके साथ या उसकी गोदी में तू बैठ जाता है, उसके साथ एक हो जाता है। तो ना तेरा मन नष्ट हुआ, ना तू नष्ट हुआ, ना तेरा प्राण नष्ट हुआ, ना तेरा जीवन नष्ट हुआ। इसलिए जिसको हम जीवन कह रहे हैं उसी को हम ईश्वर भी कहते हैं। और मैं जो जिंदा वस्तु हूं, जो जीव हूं, जो जानता है, जो सुख दुख भोगता है, मैं सुख दुख भोगता हूं, मन मेरा है, मन की इच्छा मेरी है, फिर भी कितना बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि मैं अज्ञानियों के बीच में पलता हूं। भले ही मैं मेरे घर वाले पीएचडी करे हुए हों, एमबीए कर लिया हो, बहुत बड़ा डॉक्टर भी बन गया हो, लेकिन अपने बारे में एबीसीडी भी नहीं मालूम। इतनी बड़ी बड़ी डिग्रिया लेने के बाद भी अपने बारे में मुझे इतना बड़ा कंफ्यूजन है कि मैं सोचने की कोशिश ही नहीं करता कि इस देह के अंदर, इस जिस्म के अंदर जान भी तो है। अब जब गुरु सामने होता है तो मेरे अंदर एक भावना तुरंत ही आ जाती है। यदि गुरु सामने बैठा हो उस समय तो ये भावना आ ही जाएगी कि साक्षात प्रभु हैं, साक्षात अवतार हैं, मैं जो सोच रहा हूं ये मेरे मन की जानते हैं और ये मेरे कष्ट के भी जानते हैं और इनके अंदर ये सामर्थ्य भी है, ये मेरा चाहे तो कष्ट दूर भी कर सकते हैं। उस समय तो मेरे अंदर ये सारी बातें आ जाती। लेकिन गुरु का शरीर शांत होने के बाद मुझे ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन गुरु की बात यदि समझने की कोशिश करूं तो गुरु दूसरी बात कह रहा, सतगुरु तो अंतर रमे पल पल करे पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घटका पाट उधार। गुरु तो कुछ दूसरी बात कह रहा है कि मैं तेरे इस देह के अंदर खुद निवास कर रहा हूं। तो गुरु कौन है जो इस देह के अंदर निवास कर रहा है? तो गुरु खुद वो ब्रह्म है, खुद वो ईश्वर है, वो जीवन सत्ता है जो तेरी देह का संचालन कर रही है। तू अज्ञानी जीव संसार में अज्ञान धारण करके अपने आप को देह समझकर दुख भोग रहा है, इसलिए वो तुझ पर कृपा करके तेरे सामने प्रकट हुए हैं ये सिखाने के लिए कि ये देह नाशवान है, परिवर्तनशील है। इस देह के द्वारा संसार में तू सुख कभी भी नहीं भोग पाएगा। क्यों नहीं भोग पाया? क्योंकि हर सुख दुख में बदल जाता है। जो सुख स्थिर ना रहे वो तो दुख का रूप, ऐसे घने कलेश से कैसे पावे छूट। गुरु इस वास्ते आए, ये घना कलेश तुझको लगा हुआ है शरीर के साथ साथ, इस घने कलेश से तुम्हें कैसे मुक्ति प्राप्त करनी है, इसके लिए गुरु का तुझे पता लगा है, गुरु तुझ पर कृपा करना चाहता है। अब तो गुरु की बात ही ना माने तो क्या होगा तेरा? माता पिता भी तुझको यही सिखाते हैं कि तू शरीरी है, इसके ऊपर कोई तेरा जीवन नहीं, खुद को अज्ञानी है। इसीलिए हमको माता पिता के होते हुए भी गुरु जीवन में धारण करना पड़ता है। इसलिए गुरुवाणी जब ये पढ़ते हैं तो वो आगे कह रहे हैं कि एह विचार करो अत सुखदाई, कह विध मनुआ शांत समय। क्या विचार करना था, कौन सा सुखदाई विचार था? ऐसा सुख जो दुख में कभी बदलेगा ही नहीं। वो कहते हैं कि एह विचार करो अत सुखदाई, वो केवल सुखदाई नहीं है अति सुखदाई है। कह विध मनुआ शांत समय, वो सुखदाई विचार क्या है कि ये मन के अंदर जो इच्छाओं की तरंगे उठ रही हैं ये कैसे शांत हो जाए। इस मन के अंदर जब संसारी इच्छाओं की तरंगे शांत होंगी तो इस मन के अंदर एक और तरंग उठेगी, तो कौन सी तरंग है? वो आनंद की तरंग है, वो शांति की तरंग है जो अंतर्यामी प्रभु के अनुभव से आपका उसके साथ संपर्क होता है, आपको उसका बोध होता है। तो मैंने सोचना यह था कि मानव जन्म लेकर मुझको ईश्वर ने बुद्धि दी थी, मेरे लिए ही वो धरती पर अवतार बन के प्रकट हुआ था, मेरे लिए ही उसने शास्त्रों की रचना की थी, और मैं संसार को ही सारा जितनी भी क्रेडिट है मैं संसार को ही देता हूं, उसी के लिए कोशिश करता हूं, उसी में जीवन का फेलियर और जीवन की सक्सेस समझता हूं, इसके ऊपर मेरी कोई सोच ही नहीं। इसीलिए जब तक आपका गुरु नहीं है, गुरु की शिक्षा को गहराई से पढ़ने की आप आवश्यकता ही नहीं समझते, बार बार विचार करने की आवश्यकता ही नहीं समझते, तब फिर संसार का बुखार आपका कभी भी उतरने वाला नहीं है। ये वो बुखार है जो आपकी देह को खत्म ही करके छोड़ेगा, इससे पहले आपसे छूटने वाला नहीं। तो ये गलती ना करें कि सत्य विचार इसलिए होता है ये मन कैसे शांत हो जाए। तो मन शांत कैसे होता है, जब तेरी बुद्धि का निश्चय ये बदलता है कि इस देह के अंदर सबसे कीमती चीज ईश्वर सत्ता है, जीवन सत्ता है, वो चेतन सत्ता है जो मेरे बारे में सब कुछ जानती है, जो इस देह के नाश होने पर भी मेरे मन की सुरक्षा करती है, मेरे संस्कारों की सुरक्षा करती है, मेरे स्वभाव की सुरक्षा करती है, और उसके अनुसार फिर मुझको नई देह प्रदान करती है, नया प्रारब्ध प्रदान करती है जो मेरे पास कर्मों का फल। सारी व्यवस्था मैं नहीं करता, मेरा प्रभु करता है। इतना सब कुछ जानने वाला, इतना सब कुछ मेरे लिए एग्जैक्टली करने वाला, जहां कोई गलती हो ही नहीं सकती, उसको मैं भूला रहता। याद रखिए, मनुष्य जन्म इसी वास्ते मिला था कि ये जो मन है, यदि ये संसारी मन है, वाणी कह रही है उठ उठ थाए मन अंधकारी, ठौर ना पावे बिन सत विचार। रात दिन तुझको उठा उठा के पटकता है, तेरा अंधकारी मन है, इस मन के अंदर विवेक है ही नहीं। तो विवेक कहा है गुरु ज्ञान में विवेक होता है, ये वाणी गुरु वाणी है, ये आपको विवेक दे रही है। तो मैंने बुद्धि का उपयोग इस ज्ञान को सीखने के लिए करना था, और ये जो वाणी कह रही है ठौर ना पावे बिन सत विचारी, इस मन को ठौर या इस मन को अपना ठिकाना जो ये वास्तव में चाहता है, ये आनंद चाहता है, परमानेंट सुख चाहता है, ये परमानेंट शांति चाहता है, ये एक भी बेचैनी नहीं चाहता, तो मन को वो ठिकाना कहाँ मिलेगा? उस ठिकाने का नाम ही अंतर्यामी ईश्वर है, उस ठिकाने का नाम ही अंतर्यामी आत्मा है, उस ठिकाने का नाम ही अंतर्यामी गुरु है। तो ये बुद्धि जो उसके महत्व को समझती है, उसके विचार को समझती है, जिसको सत्विचार कहते हैं, तब जाकर मनुष्य को अपना और मिलता है, अपना ठिकाना मिलता है, और शांति का सागर जो ईश्वर है वो इसको अपनी देह के अंदर ही प्राप्त हो जाता है, तो हमेशा हमेशा के लिए मन की बेचैनी से मुक्त हो जाता है। ओम शांति।